ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि समय के साथ पूर्वोत्तर भारत की प्रासंगिकता बढ़ेगी। उन्होंने विदेशी राजदूतों से आग्रह किया है कि वे इस क्षेत्र को समझें और इसकी खूबियों को अपनी सरकार और उद्योगों के साथ साझा करें। विदेश मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित आगामी पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के लिए राजदूतों की एक बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान परियोजना जैसी पहल काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति बोली के नौवे दौर में 1,36,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के 28 ब्लॉक आवंटित किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये भारत की अप्रयुक्त ऊर्जा संभावना तक पहुंचने और आयात निर्भरता कम करने में सहायक होगा। हाल ही में पारित आउटफील्ड विनियामक और विकास संशोधन विधेयक को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक डोमेन में नियम जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से प्रशासनिक बदलाव के लिए IBM टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ कल एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत मुंबई, पुणे और नागपुर सहित राज्य में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही IBM के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म की मदद से सरकारी कर्मियों और विद्यार्थियों को AI, साइबर सुरक्षा और क्लाउड प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जाएगा। देश के सबसे नवोन्मेषी गेम डेवलपर्स ने रोड टू गेम जैम के शीर्ष 10 गेमों की घोषणा के साथ ही सुर्खियों में अपनी जगह बना ली है। ये भारत सरकार के विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का मुख्य आकर्षण है। 1 से 4 मई तक मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन में गेमिंग के भविष्य को आकार देने वाली रचनात्मकता का उत्सव मनाया जाएगा। रोड टू गेम जैम में 175 से अधिक टीमों ने मूल गेम प्रस्तुत किए, में से प्रत्येक का गेमिंग उद्योग के अनुभवी पेशेवरों की ज्यूरी द्वारा मूल्यांकन किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इस महीने की 25 तारीख निर्धारित की है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को अत्यधिक फीस और अभिभावकों तथा छात्रों को परेशान करने की शिकायतों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्कूल फीस में कोई भी बढ़ोतरी मौजूदा नियमों और कानूनों के तहत की जानी चाहिए और इसका उल्लंघन करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर, किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम कायदे कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा।
सरकार ने कहा है कि 2030 तक अमेरिका के साथ भारत व्यापार बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वाणिज्य और उद्योग सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका परस्पर लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में मोटे तौर पर एक सहमति तक पहुंच चुके हैं, जिसका लक्ष्य 2025 तक इसके पहले चरण को अंतिम रूप देना है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति मार्च महीने में कम होकर 3.34% पर आ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.25% और शहरी क्षेत्रों में 3.43% रही। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हरा दिया। कल रात चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने 112 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 15 ओवर और एक गेंद में 95 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स का सामना आज राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।